संकट के कारण कई थे। टिप्पणीकारों ने वित्तीय संस्थानों, नियामकों, क्रेडिट एजेंसियों, सरकारी आवास नीतियों और उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न स्तरों के अपराध को जिम्मेदार ठहराया। दो ट्रिगर सबप्राइम ऋण में वृद्धि और अचल संपत्ति की अटकलों में वृद्धि थे। किसी दिए गए वर्ष में उत्पन्न होने वाले निम्न गुणवत्ता वाले सबप्राइम बंधक का प्रतिशत 2004 से 2006 तक ऐतिहासिक 8% या उससे कम से लगभग 20% हो गया। संयुक्त राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत अधिक अनुपात के साथ इन सबप्राइम बंधक का एक उच्च प्रतिशत, उदाहरण के लिए 2006 में 90% से अधिक एक ब्याज दर थी जो समय के साथ बढ़ी। निवेशकों के लिए बंधक निर्माण की हिस्सेदारी के साथ रियल एस्टेट की अटकलें भी बढ़ गईं, यानी जिनके पास प्राथमिक निवासों के अलावा अन्य घर हैं, जो 2000 में लगभग 20% से बढ़कर 2006 से 2007 में लगभग 35% हो गए। निवेशक, यहां तक कि पहली दर क्रेडिट रेटिंग वाले, कीमतों में गिरावट आने पर गैर निवेशकों की तुलना में डिफॉल्ट होने की अधिक संभावना थी। ये परिवर्तन कम ऋण मानकों और उच्च जोखिम वाले बंधक उत्पादों की विशेषता वाले व्यापक रुझान का हिस्सा थे, जिसने अमेरिकी परिवारों को तेजी से ऋणी बनाने में मदद की। व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय के लिए घरेलू ऋण का अनुपात 1990 में 77% से बढ़कर 2007 के अंत तक 127% हो गया। 2006 के मध्य में जब अमेरिकी घर की कीमतें नाटकीय रूप से कम हो गईं, तो उधारकर्ताओं के लिए अपने ऋणों को पुनर्वित्त करना अधिक कठिन हो गया। जब परिवर्तनीय दर बंधक उच्च ब्याज दरों, उच्च मासिक भुगतान के कारण पर बसना शुरू हुआ, तो बंधक चूक नाटकीय रूप से बढ़ गई। बंधक समर्थित प्रतिभूतियों, जिनमें सबप्राइम बंधक शामिल हैं, व्यापक रूप से वित्तीय कंपनियों द्वारा विश्व स्तर पर आयोजित किए गए, उनके अधिकांश मूल्य खो गए। वैश्विक निवेशकों ने ऋण का समर्थन करने के लिए निजी वित्तीय प्रणाली की ओर से क्षमता और इच्छा में गिरावट के हिस्से के रूप में बंधक समर्थित ऋण खरीद और अन्य प्रतिभूतियों में भी भारी कमी की। अमेरिकी ऋण और वित्तीय बाजारों की दृढ़ता के बारे में चिंताओं के कारण दुनिया भर में ऋण की मजबूती और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में आर्थिक विकास में मंदी आई।